क्या होगा आज का टॉपिक? एनी आइडिया? क्या फेस्टिवल आ रहा है अभी? जगन्नाथ रथ यात्रा। सो मैंने सोचा कि ये पूरा पुरुषोत्तम महीना हम लोग जगन्नाथ अष्टकम का पारायण कर रहे थे, तो आज हम उसका मतलब समझेंगे। तो जगन्नाथ अष्टकम का पारायण करेंगे और फिर एक एक लाइन उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम जगन्नाथ अष्टकम जब गाए तो भाव से गा सकते हैं। उसके पहले जगन्नाथ जी का और बलदेव सुभद्रा महारानी का और सुदर्शन चक्र का हम प्रणाम मंत्र बोलेंगे और उसके बाद जगन्नाथ अष्टकम शुरू करेंगे। मेरे पीछे गाएंगे, देव देव जगन्नाथ प्रपनर्ति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्षा पतिता मां भवसागरे जय देवी भक्तिदात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी जय देवी सुभद्रा त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी नमस्ते तु हलग्रामा नमस्ते मूसलायुधा नमस्ते रेवती कांता नमस्ते भक्तवत्सला सुदर्शना महाज्वाला कोटि सूर्य समा प्रभाव अज्ञानतिमिरांधाना वैकुंठ पथ प्रदर्शका जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। ये ट्यून तो सबको आता है, हम लोग रोज गा रहे हैं तो साथ में गा सकते हैं। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत कराओ कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत कराओ मुदा भीर नारी वदना कमला स्वदा मधुपा मुदा भीर नारी वदना कमला स्वदा मधुपा रमा शंभु ब्रह्मामा पति गणेशार्चित पादो रमा शंभु ब्रह्मामा पति गणेशार्चित पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवातु मे। ये जगन्नाथ अष्टकम है। अष्टकम माने आठ श्लोक होते हैं इसके, और कहा गया है कि आदि शंकराचार्य ने इस अष्टकम का, इस जगन्नाथ अष्टकम की रचना की थी, लेकिन गौड़ीय वैष्णवों का ये मानना है कि इस जगन्नाथ अष्टकम की रचना चैतन्य महाप्रभु ने की है। तो अब इसकी रचना चैतन्य महाप्रभु ने की है या आदि शंकराचार्य ने की है, लेकिन हमारे लिए ये अष्टकम पूजनीय है और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर शंकराचार्य ने भी की हो तो शंकराचार्य शिव है, शिवजी है, शंकराचार्य माने शिवजी, और शिवजी कौन है? वैष्णव है। तो अगर वैष्णव ने रचना की हो या भगवान ने खुद रचना की हो बहुत ही सुंदर रचना है और इसके द्वारा, इसको समझने के द्वारा हमारी जगन्नाथ जी के ऊपर में भक्ति बढ़ेगी। तो पहली लाइन बोला गया है, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत कराओ। कदाचित माने संस्कृत में, या पहले कभी माने इसके पहले। सी अगर ये शंकराचार्य जी ने भी अगर रचना की हो, एक बात तो है कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में थे 18 साल, वो जगन्नाथ जी का जब दर्शन करते थे तब रोज ये जगन्नाथ अष्टकम गाते थे। तो आज हम जो इसका तात्पर्य करेंगे या अनुवाद करेंगे, हम उस भाव से करेंगे जिस भाव से चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहाँ है, नीलाचल धाम में है, जगन्नाथपुरी में है, जगन्नाथ जी को देख रहे हैं, और जगन्नाथ जी को देखते हुए वो कह रहे हैं कदाचित पहले, इसके पहले तुम कहाँ थे, अभी तो तुम यहाँ दिखाई दे रहे हो अपनी बहन के साथ, भाई के साथ। कदाचित कालिंदी तट, इसके पहले तुम कहाँ थे, कालिंदी तट। कालिंदी माने यमुना जी। अब तो सबको पता चल गया, 2 एपिसोड हमने यमुना जी की महिमा के बारे में समझा है। कालिंदी, यमुना जी को कालिंदी क्यों कहते हैं, क्योंकि कालिंद पर्वत से वे आती है। कुछ कहते हैं इसलिए उनको कालिंदी कहते हैं क्योंकि वो काली काली हो गई है, क्योंकि काले काले लड़के ने उसमें स्नान किया था, काले काले कृष्ण ने उसमें स्नान किया था, तो अपना रंग लगा के चला गया। पर कुछ वैष्णव आचार्य ये कहते हैं कि कालिंदी इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि कली के प्रभाव को जो नष्ट करती है उसे कालिंदी कहते हैं। जो यमुना जी की सेवा करता है, यमुना जी का पान करता है, उसको कली नहीं छू सकती है, तो इसलिए भी यमुना जी को कालिंदी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे कदाचित कालिंदी तटे, इसके पहले तुम कालिंदी के तट पे क्या थे, विपिन संगीत कराओ। विपिन माने वन। कालिंद के तट के पास में कौन सा वन है, वृंदावन। कालिंद के तट के पास क्या है, वृंदावन। तो बोलते इसके पहले कालिंद के तट पे जो वृंदावन है वहां तुम क्या करते थे, संगीत। क्या संगीत, हिंदुस्तानी क्लासिकल या कार्नाटिक वोकल। भगवान क्या करते थे, वेणु बजाते थे। और वेणु बजाने से क्या होता था, करावो। करावो माने जो उन वेणु को सुनते थे उनका मन चंचल हो जाता था, जैसे गोपियों का मन चंचल हो जाता, जब भगवान वेणु बजाते तब उनका मन चंचल हो जाता, और वो क्या करती, दौड़ के जहां पे वो, जिस वन में भगवान वेणु बजाते हैं वहां पे वो भाग के आ जाती है। दूसरे लाइन में बोलते हैं भाग के आ जाती है, आने के बाद क्या होता है, मुदा भीर नारी वदनम। मुदा माने आनंद, मुदा भीर नारी माने जब वो भगवान की वेणु सुन के आती थी तो उनका मुख मंडल एकदम आनंद से भर जाता था। जब वो भागती हुई भी आती थी और जब कृष्ण को देख लेती थी तब वो मुदा भीर आनंद से, वो नारी जो स्त्रिया है, जो गोपिया है, वो भर जाती थी। यहाँ पे इसका एक आंतरिक भाव ये भी है कि भगवान के बिना तो वो मुरझाई हुई रहती है ना, तो भगवान के बिना वो मुरझाई हुई है, जब भगवान को देखती है तब वे खिल जाती है। जिस तरह से जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो कमल खिल जाता है, उसी तरह जब भगवान की वेणु सुनती है गोपिका तब उनका मुंह खिल जाता है। कैसे, एक कमल पुष्प जैसे, कमल पुष्प जैसे जो है उनका मुख खिल जाता है। अगर आप देखो चैतन्य महाप्रभु की जो रचना है शिक्षाष्टकम, उसमें भी वो एक श्लोक देते हैं, युगायतम निमिषेना चक्षुषा प्रविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहन हेनमे। तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि गोपियों का, राधा रानी का भाव कैसा है कि भगवान के सिवाय एक क्षण भी उनको ऐसा लगता जैसे बहुत सारे युग बीत गए हो। युगायतम निमिषेना चक्षुषा प्रविशायतम, एकदम पानी जो है अश्रु गिर जाते हैं। जगत सर्वम गोविंद शून्यायतम जगत सर्वम, लगता है इस दुनिया में कुछ भी नहीं, सब कुछ शून्य है। गोविंद विरहेन में, गोविंद के विरह में हम नहीं रह सकते। तो यहाँ पे भी ये बता रहे हैं भाव कि जब गोपिका है भगवान की विरह में होती है तो मुरझाई हुई होती है, जैसे भगवान की वेणु सुनती है मुदा भीर आनंद वदन, एकदम उनका आनंद से उनका जो है कमल जैसा उनका मुंह खिल जाता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, अगर उनका मुंह कमल जैसे खिल जाता है तो बाद में बोला गया है आस्वाद मधुपा। आस्वादन करना माने स्वाद लेना, उसका आनंद लेना है। कौन लेता है उसका आनंद? मधुपा। मधुपा माने कौन? वन बिहारी, ब्रज बिहारी, बांके बिहारी। कौन? कृष्ण, वही है मधुपा। मधुपा माने मधुसूदन, मधुसूदन माने भौरा। भौरा क्या करता है? जब बहुत सारे फूल होते हैं तो फूलों में से मधु का आस्वादन करता है। तो पहले तो भगवान वेणु बजाते हैं, उसके बाद में जब सारी गोपिकाएं आ जाती है और उनका कमल जैसा मुखमंडल खिल जाता है, तो मधुपा मधुसूदन, भगवान मधुसूदन भौरे के भांति उनका आस्वादन करते हैं। अभी साधारण भाषा में अगर कोई ये बात सुनेगा तो लगेगा कि ये तो किसी लंपट के बारे में बात कर रहे हैं, जो पहले स्त्रियों को बुलाता है, फिर उनका मुखमंडल देखता है और फिर आनंद लेता है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? तो दूसरे लाइन में बता देते कि हम किसी साधारण लंपट के बारे में बात नहीं कर रहे, हम जिसके बारे में बात कर रहे वो कौन है? रमा, शंभु, ब्रह्मा, अमरपति, गणेश, सब बड़े बड़े नाम दे दिए, जो बड़े बड़े लोग जिनके पाद पद्म की सेवा करते हैं, अर्चना करते हैं, वैसे कृष्ण के बारे में हम बात कर रहे हैं। समझ में आया? रमा माने क्या है? लक्ष्मी देवी। रमा माने लक्ष्मी देवी, शंभु माने शिव जी, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, सारे बड़े बड़े नाम है ना, बिग प्रोफाइल्स, सारे बिग प्रोफाइल है। अमरपति, अमरपति माने इंद्र, अमर, अमरावती का जो राजा है वो है अमरपति, तो इंद्र। गणेश, जो देवताओं के लिए भी पूजनीय है, जो अग्र पूजा लेते हैं, वो भी भगवान को क्या करते हैं? अर्चित पादो, अर्चित पादो, अर्चना करते हैं। किस चीज की? भगवान के पाद पद्म की। तो बोलते हैं हम यहाँ पे किसी साधारण आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, जिनको ये सारे पूजा करते हैं, जिनके पाद पद्म की। अच्छा, बहुत अच्छा। जो पहले वृंदावन में थे, जो स्त्रियों का सुंदर, गोपियों का सुंदर मुख का आस्वादन करते थे, जिनको ये सारे बड़े बड़े लोग भी पूजा करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो अब क्या करना है? ऐसे श्री जगन्नाथ जी, यहाँ पे लिखा है जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावातु में, ऐसे श्री जगन्नाथ जी हमेशा मेरे नयनों के पथ पर आप रहो, माने हमेशा मुझे दर्शन दो, या दूसरे शब्द में कहा जाए तो जहां जहां मेरी नजर जाए वहां वहां सिर्फ आप मुझे दिखाई दो। ये है हमारी प्रार्थना। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवातुनि। जगन्नाथ स्वामी जो जग के नाथ है, पूरे जगत के नाथ है। स्वामी, यहाँ पे स्वामी भी दो भाव में है। अगर हम जब स्वामी कह के संबोध करते हैं तो हमारा मतलब है स्वामी माने जो सबकी रक्षा करे, जो जगत की रक्षा करते हैं उन्हें स्वामी कहते हैं। तो भगवान तो पूरे जगत में जितने जीव है सबकी रक्षा करते हैं। अगर जगत में जितने जीव है सबकी रक्षा करते हैं तो हम भी वन ऑफ द जीव है। तो हम भगवान को ये प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वामी तुम तो पूरे जगत के सब जीवों की रक्षा करते हो, तो मेरी भी रक्षा करो। लेकिन मुझे किस तरह की रक्षा चाहिए? मैं चाहती हूं कि आप हमेशा मेरे आंखों के सामने रहे, यही तो सबसे बड़ी रक्षा है। इससे बड़ी रक्षा हमें क्या चाहिए? अगर भगवान हमारी आंखों के सामने रहेंगे तो हम हमेशा माया से सुरक्षित रहेंगे। और अगर चैतन्य महाप्रभु के भाव से समझे, राधा रानी के भाव से, अगर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि स्वामी, जैसे राधा रानी विरह में कह रही है ना, चैतन्य महाप्रभु जैसे कह रहे हैं कि विरह में कि ओ मेरे प्रियतम या मेरे स्वामी हमेशा मेरी आंखों के सामने बने रहो, तुम बार बार भाग क्यों जाते हो, छुप क्यों जाते हो मुझसे? श्री चैतन्य महाप्रभु जब ये जगन्नाथ अष्टकम गा रहे हैं तो उनका भाव अलग है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण का कंबाइन फॉर्म है। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए इस जगत में? दो ही कारण से आए, उनको युग धर्म का प्रचार करना था, और राधा रानी का जो प्रेम है, राधा रानी का जो प्रेम है वो उसका आस्वादन करना चाह रहे थे कि जब राधा मुझे प्रेम करती है तो उसको मुझसे ज्यादा आनंद क्यों मिलता है, इसलिए मैं भक्त के रूप में आऊंगा और वो जो राधा रानी का प्रेम है उसका आस्वादन मैं करूंगा। तो ये दो काम के लिए वो आए थे। तो युग धर्म प्रचार तो उन्होंने कर दिया, हरे कृष्ण महामंत्र सबको दे दिया। अब दूसरा काम क्या था? राधा रानी के भाव का आस्वादन करना। वो भाव का आस्वादन चैतन्य महाप्रभु ने कहां किया? जगन्नाथपुरी में, वहां पे वो राधा रानी के भाव में, एक भक्त के भाव में जगन्नाथ जी को प्रेम करते थे, भक्त के भाव में जगन्नाथ जी की सेवा करते थे, भक्त के भाव में जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। तो यहाँ राधा रानी के भाव से वो कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे विरह नहीं सहन कर पाऊंगी, मैं हमेशा मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे आंखों के पथ पे रहो। आई बात समझ में? और एक बार ये श्लोक करके फिर दूसरे श्लोक में जाएंगे। अब इस बार जब करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आया, आप सही है ना, तो आप भाव से कर पाएंगे। कदाचित कालिंदी तट विपिना संगीत करावो, मुदा भीर नारी वदना कमला स्वदा मधुपा, रमा शंभु ब्रह्मानर पति गणेशार्चित पादो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवा तुमी। नेक्स्ट श्लोक। भुज सव्य वेणु सिरा शिशिखी पिछं कतिताटे, दुकालं नित्रान्ते सहा चर कटाक्षं विदधाते, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवा तुम। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का कृष्ण का सुंदर रूप की वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भुजा सव्य वेणु, भुजा सव्य वेणु माने उनके बाएं हाथ में कृष्ण ने क्या किया है, वेणु को पकड़ा है। कभी कभी भगवान दाएं हाथ से भी पकड़ते हैं, कभी कभी बाएं हाथ से भी वेणु को धरते हैं। तो भगवान ने बाएं हाथ से वेणु को पकड़ा है और सिरसी सिखी पिछिम, भगवान के सिर पे क्या है, सिखी पिछिम, सिखी माने मोर, संस्कृत में मोर को सिखी भी कहते हैं। क्यों सिखी कहते हैं, क्योंकि मोर के ऊपर में एक शिखा जैसा है ना, ऊपर में उसके ऊपर में जो होता है, तो मोर को सिखी कहते हैं। तो कहते हैं सिखी पिछिम कति तटे, भगवान के सिर के ऊपर में सिखी पिछ है, मोर का पिछ है या मोर का पंख, भगवान के सिर पे मोर का पंख है। आप इसका डिस्क्रिप्शन अगर देखो, कहीं भी अगर भगवान कृष्ण का डिस्क्रिप्शन हो तो ऑलमोस्ट ऑल ऐसा ही है, वेणु पकड़ा हुआ है, मोर पीछे है, ओ पीतांबर बांधा हुआ है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही समझा रहे हैं कि सिखी पिछिम कति तटे, कति तटे माने कमर पे, क्या किया है कमर पे, नीचे लिखा है दुकुलम, दुकुलम माने पीतांबर, कपड़ा, कैसा कपड़ा बांधा हुआ है, पीतांबर। पीतांबर रंग मतलब क्या है, पीतांबर रंग हल्दी नहीं है, पीतांबर रंग माने सोनेरी रंग, थोड़ा सा मोल्टन गोल्ड जैसा। मोल्टन गोल्ड रंग किसका है, कुछ याद आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु का, और किसका है, राधा रंग का। अब भगवान कृष्ण सब समय किसको याद करना चाहते हैं, इसीलिए वो हमेशा पीतांबरी कपड़ा पहनते हैं। बहुत बार मुझे लोग पूछते हैं उनको पीतांबरी कलर ही क्यों पसंद है, मैंने बोला मैंने पूछा नहीं, पूछूंगी जब जाऊंगी, लेकिन फिलहाल तो मुझे ये समझ में आता है क्योंकि राधा रानी का रंग भी मोल्टन गोल्ड कलर का है, तो इसीलिए उनकी, इसीलिए अगर आप देखो तो बेशक कुछ भी कपड़ा पहन ले भगवान, कोई भी रंग का, लेकिन कमर पे तो पीतांबरी बांधेंगे ही, राधा रानी को याद करते हुए मोल्टन गोल्ड कलर में, और ऊपर में मोर का पंख। कभी कभी लोग अजीब से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, मोर का ही पंख क्यों, कबूतर का क्यों नहीं, ऐसे यार। अब हर एक चीज के पीछे शायद बहुत सारे कारण हो, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जहां तक मुझे समझ में आता है कि मोर एक बहुत पवित्र पक्षी है, मोर की जो ये योनि है इसमें मिथुन का कुछ नहीं होता, जब उनका मोर जब रिप्रोड्यूस भी करते हैं तो मिथुन नहीं होता है, जब मोर के आंसू बहते हैं तब मोरनी उस आंसू को पीती है और फिर वो गर्भवती बन जाती है, तो एकदम पवित्र पक्षी है, तो इसीलिए ठाकुर जी उसका पीछा, जो उसका पंख है, अपने सिर पे धारण करते। और उसका और कई कारण है, मैंने सुना था एक बार दीनबंधु प्रभु बता रहे थे कि कैसे एक लीला है, विशेष लीला, जिसमें ठाकुर जी राधा रानी से रूठ जाते हैं और देरी से आते हैं और बात गए थे चंद्रावली से मिलने, और मिलने के बाद राधा रानी के पास आते हैं और बातों बातों में उनके मुंह से निकल जाता है चंद्रावली। तो राधा रानी बोलते हैं, अच्छा आप चंद्रावली से मिलने गए थे? तो कृष्ण बोलते, नहीं नहीं, मेरे बोलने का मतलब है कि तुम देखने में चंद्र जैसी हो, बस वही मैं बोलना चाह रहा था। तो राधा रानी बोले, अच्छा मैं देखने में चंद्र जैसी हूँ? बोलते, हाँ एकदम चंद्र जैसे। तो राधा रानी बोले, ये भी गलत है। तो कृष्ण बोलते, इसमें गलत क्या है? तो राधा रानी बोलते, क्योंकि चंद्र में तो डाग है, उसका मतलब आप बोलना चाहते हैं कि मुझ में डाग है। तो उस तरह से जो है उनका बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाता है और राधा रानी रूठ के चले जाते हैं। और फिर कृष्ण जो है वो मोर के जैसे जो है नाचते हैं, राधा रानी को मनाते हैं, और लीला है कैसे मोर भी जो है भगवान के साथ नाचते हैं। सी ये मोर जो होते हैं वो कब नाचते हैं पता है? जब बारिश गिरती है ना। तो आप अगर वृंदावन में देखो तो वो बारिश का इंतजार नहीं करते, वो जब भी कृष्ण को देखते तभी नाचते हैं। तो ऐसे कैसे नाचते होंगे? इसके पीछे भी कोई साइकोलॉजिकल रीजन है। साइकोलॉजिकल रीजन ऐसा है कि भगवान कृष्ण देखने में बादल जैसे है। कैसे बादल? पानी से भरे हुए बादल। बारिश आने से पहले बादल का रंग कैसा होता है, वैसे कृष्ण का रंग है। तो जब ये मोर देखते हैं दूर से कृष्ण को आते हुए, तो उनको लगता नहीं है कृष्ण आ रहे, उनको लगता है बादल आ रहा है, वो भी बारिश का बादल। और जब फिर कृष्ण वेणु बजाते हैं तब उनको लगता है कि बारिश हो रही है, क्योंकि उनकी वेणु इतनी मधुर होती है। तो वो सोचते हैं कि बारिश हो रही है इसलिए वो नाचने लगते हैं। तो इसलिए वो जितना बार कृष्ण को देखते हैं कृष्ण के साथ वो नाचने लगते हैं। और एक बार कृष्ण के साथ नाचते नाचते उस आनंद के बाद, उस आनंद से नाच करने के बाद में अपना एक मोर पंख कृष्ण के लिए छोड़ देते हैं, कृष्ण को भेंट करते हैं। और फिर कृष्ण जो है उनकी जो भेंट है स्वीकार करके अपने सिर पे लगाते हैं। कितनी सुंदर बात कि एक पक्षी को भी पता है कि भगवान को हमें देना चाहिए, लेकिन हम मनुष्य होकर भी हमें भगवान से हमेशा लेना है। हम भगवान को कभी कुछ देना नहीं चाहते, हमारा भावना ही ऐसा है। एक पक्षी भी जब भगवान को देखता है तो उसका दिल करता है मैं क्या दूं भगवान को, और हम तो जैसे आते हैं वैसे मैं क्या मांग लूं, बस हमारी भावना ऐसी होती है। तो इसीलिए, क्योंकि इसकी इतनी सुंदर भावना है कि वो भगवान को देना चाहते, इसलिए तो उसका पंख भगवान अपने सिर पे धारण करते हैं। बहुत ही पवित्र पक्षी है मोर। तो यहाँ पे इसलिए तो भगवान बोल रहे हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं, सिखी सिरसी सिखी पिछन, सिर के ऊपर में सिखी का पिछ लगाते हैं। हमारी जो ये भावना है भगवान से हमेशा लेना, उनको कुछ नहीं देना, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी अज्ञानता है। और ज्ञान और भक्ति कौन दे सकता है? श्रील प्रभुपाद जैसा कोई साधु पुरुष। हमारा जीवन भी देखा जाए तो मोर जैसे ही है। मोर जब ग्रीष्म काल होता है, गर्मी होती है, तो मोर बहुत ही मुरझाया हुआ दुखी सा रहता है, लेकिन जब बारिश आती है तो मोर नाचने लगता है। उसी तरह से हमारा जीवन भी, ये जो संसार दवनला है उसमें बहुत हम दुखी है, कोई ना कोई समस्या, कभी आध्यात्मिक, कभी आदि देवी, कभी आदि भौतिक। इस ग्रीष्म काल में, इस संसार के दुख में हम तपते रहते हैं, लेकिन बारिश कब आती है हमारे जीवन में? जब कोई साधु पुरुष आके क्या करता है, हमारे जीवन में त्रनाय कारुण्य घन घनात्वम, बारिश करता है। किस चीज की? दया की, प्रेम की, भक्ति की। इसलिए तो हम गाते हैं ना सुबह सुबह, संसार दावान ललीध लोका त्रनाय कारुण्य घना घनात्वम प्रप्तस्य कल्याणा गुणानवस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जो हम इस संसार के तप में जो हम जल रहे हैं, संसार दवनला अग्नि में हम जल रहे हैं, और वो आते हैं हमारे जीवन में और क्या करते हैं, त्रनाय कारुण्य, ठंडी ठंडी बारिश हम पे गिराते और हमारे संसार के सारे दुख ये हो जाते। तो जिस तरह से मोर ग्रीष्म काल में दुखी रहता है लेकिन बारिश आने से नाचने लगता है, उसी तरह से जब हमारे जीवन में कोई साधु पुरुष की एंट्री होती है तब हमें भी क्या करना चाहिए, आनंद से नाचना चाहिए। इसलिए कीर्तन में नाचना चाहिए, कीर्तन में खड़ा नहीं रहना चाहिए, मोर की तरह नाचना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में भी बारिश आ गई है इस एक साधु पुरुष के। आगे चलेंगे। तो भुजसव्य वेनुम सिरसी सिख पिच्छिम कतितटे दुकुलम पीताम्बर, जो है कमर पे बांधा हुआ है। उसके बाद अरे बहुत सुंदर बात, उसके बाद बोल रहे नेत्रांते सहचर कटाक्षम विदधते। नेत्रांते भगवान की आंखों में क्या दिखाई दे रहा है, आंखों में सहचर। सहचर माने जो भगवान के साथ चलते हैं। कौन चलता है भगवान के साथ? गोप बालक, उनके दोस्त चलते हैं ना उनके साथ, सखा। और कौन चलता है उनके साथ? गाया। तो उनके भगवान के नेत्रों में हमेशा क्या दिखाई देते हैं? वो गोप सखा और गाय। ये हमें अभी आप आजकल एक स्टाइल है ना फोटो लेने का, आप गॉगल्स पहनो, फिर गॉगल्स में जिसका फिर रिफ्लेक्शन दिखेगा, फिर आप सेल्फी या फोटो लेते हो, ऐसे देखते हो ना फोटोज आते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में। तो यहाँ पे भी एक स्टाइल बता रहे हैं कि अगर आप ठाकुर जी का मुखमंडल देखो तो उनकी आंखों में आपको कौन दिखाई देते हैं? उनके भक्त। और भक्तों की आंखों में देखो तो कौन दिखाई देते हैं? भगवान। भगवान की आंखों में देखे तो भक्त, भक्त की आंखों में देखो तो भगवान। तो बोल रहे नेत्रांते, भगवान के जो सुंदर नेत्र है हमेशा उनमें क्या दिखाई देता है? गोप सखा। वो हमेशा उनके तरफ से साइड से देखते ही रहते हैं, कुछ भी करे उनकी हमेशा ये चिंता रहती है, सुबल क्या कर रहा है, मधुमंगल क्या कर रहा है, श्रीदाम को क्या चाहिए, उनके साथ उनके बारे में सोचते रहते हैं। और बोला गया है कि जब भगवान वृंदावन में चलते थे तब ये सारे भगवान के साथ साथ चलता था। भगवान रुक जाते तो सारे रुक जाते, भगवान आगे जाएंगे तो आगे, रुक गए तो रुक गए। ऐसा कोई नहीं था जो भगवान के आगे आगे चलता था। क्यों नहीं चलते थे भगवान के आगे? आगे चलेंगे तो वो दिखाई नहीं देंगे ना, वो हमेशा चाहते हैं उनके नेत्रों से हमेशा उनको देखते रहे, तो इसलिए उनके समान से चलते चलते उनको देखते थे। तो सब तो नहीं चल सकते ना, इतने लोग हैं, तो कुछ लोग पीछे हो जाते तो कुछ आगे पीछे, ऐसे करते रहते थे। सी एक्चुअली क्या होता है, जब कोई गाय चराने जाता है तो गाय आगे चलती है और जो गाय चराने वाला होता है वो पीछे चलता है, वो देखता रहता है कि गाय कहीं और तो नहीं चली जा रही है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, वो गाय आगे जाना ही नहीं चाहते, वो लोग कृष्ण को देखना चाहते तो वो आगे ही नहीं जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, सर्कल सर्कल में सब घूमते रहते हैं, कोई इधर कोई उधर, पीछे 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 उनके आसपास। और कभी ऐसा हो गया कि कृष्ण थोड़ा स्पीड में चलने लगे आगे, कभी कभी कृष्ण के स्पीड के साथ में सब नहीं चल पाते और वो आगे निकल गए, तो फिर ये लोग सारे रेस लगा देते थे। भागवत के 10th कैंटो में है, आप पढ़ सकते हैं, इसमें श्लोक आता है। तो सारे रेस लगाते थे कि कौन पहले कृष्ण को छुएगा, तो सारे पहले शुरू, अहम पूर्वम, मैं पहले छूंगा, मैं पहले छूंगा। सारे क्या करते थे, भाग के भगवान को छूने की कोशिश करते थे। तो कितना सुंदर एक वातावरण वृंदावन का देखिए, उनकी आंखों में भक्त लोग, उनके हाथों में वेणु और उनके सिर पे जो है मोर का पंख और कमर पे पीतांबर। उसके बाद बोल रहे सदा श्रीमद वृंदावन वसती लीला परिचय। भगवान क्या करते हैं, सदा श्रीमद वृंदावन में ही रहते हैं। भगवान ने तो वचन दिया है ना कि मैं कभी वृंदावन को तज के नहीं रखू, एक पैर भी नहीं रखूंगा वृंदावन से बाहर, मैं कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा भगवान वृंदावन में ही रहते हैं। और उसके बाद में बोला गया है वसती लीला परिचय। भगवान का बारे में जब बात करते हैं तो पक्का वृंदावन की लीलाओं के साथ में जोड़ते हुए ही बात करते हैं, प्रसिद्ध है वो। कृष्ण माने बांके बिहारी, कृष्ण माने वृंदावन बिहारी। तो जिनका परिचय वृंदावन की लीलाओं से दिया जाता है, ऐसे श्री कृष्ण को, श्री जगन्नाथ जी को मेरी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुमी। ऐसे श्री जगन्नाथ जी हमेशा मेरे नैनों के पथ में आप रहिए। सी जो भगवान के भक्त होते हैं वो एक मिनट के लिए भी भगवान की विस्मृति नहीं चाहते हैं। अगर एक मिनट के लिए भी अगर वो भगवान को भूल जाए तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। कभी खाते हुए या नहाते हुए या किसी से बात करते हुए अगर भगवान की विस्मृति हो जाती है तो वो तड़पते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे कि हमेशा मेरे सामने ही आप रहो, मैं हमेशा आपको देखना चाहता हूँ। एक बार ये श्लोक पूरा पूरा पढ़ेंगे इस बार समझते हुए। भुजा सव्येनु सिरा सिसिखे पिछां कतिताटे दुकुलं नित्रांते सहा चरा कटाक्षं विदधाते सदा श्रीमद्वृंदावना वसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है 10.21.5 वेणुगीत। इसमें गोपिकाएं भगवान के इसी सुंदर रूप का वर्णन करती है और आप देखोगे तो एक एक लाइन सेम, सिर्फ वहां पे शब्दांश शब्दकोश दूसरा यूज किया गया है। बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णये करणीकरम बिब्रिहात कनक कपीसं वैजयंती च मालम रंध्रान वेणुराधर सुधयो पूर्णये गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्रविशात गीत कीर्ति। इसमें भी यही बोलते गोपिकाएं, बरहा पीडम नटवर वपु। बरहा पीडम माने ऊंचा सा उनका जो किरीट है, क्योंकि वहां पे मोर पंख लगा हुआ है। बरहा पीडम नटवर वपु, जब भगवान चलते हैं एकदम एक नटवर जैसे जो सुंदर नाच जानता हो। नटवर वपु कर्णये करणीकरम, उनके जो कर्ण है जो कान है उस पे ब्लू कलर का फ्लावर, नील कलर का जो है फ्लावर लगा हुआ है करणीकरम। बिब्रिहात कनक कपीसम वैजयंती माला, पीताम्बर कपड़े पहने हुए है, वैजयंती की माला है। रंध्रान वेणुर अधर सुधयो, उनके हाथ में मुरली है, वेणु है, वेणु में रंध्र है, होल्स है, और उनके जो सुंदर से अधर होट है उधर क्या कर रहे हैं, उस वेणु के जो रंध्र है उसमें अमृत डाल रहे हैं, क्योंकि उनकी होट स्पर्श हो रही है ना वेणु को, तो अमृत पूरा उस वेणु में जा रहा है। रंध्रान वेणुर अधर सुधयो पूर्ण ये गोप वृंदे, और आसपास में क्या है, सब गोप सखा है। क्या कर रहे हैं वो सारे गोप सखा, भगवान का गुणगान कर रहे, उनके चरित्र का गुणगान कर रहे। वृंदावन स्वपद रमन, और पूरे वृंदावन में भगवान की पाद पद्म मुद्रा कर दी है सब जगह, क्योंकि वो चले है ना, तो हर जगह भगवान के पैरों के नीचे तो साइंस होते हैं ना, शंख चक्र गदा पद्म, ऐसे बहुत सारी साइंस होते हैं, तो पूरे वृंदावन में वो साइंस सब जगह दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे वेणु गीत में भी गोपिकाएं भगवान का वर्णन इसी तरह से करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु खड़े हैं जगन्नाथ जी के सामने, लेकिन क्या सोच रहे हैं वृंदावन के बारे में। तुम पहले कभी वृंदावन में थे, वहां तुम वेणुधारी थे, तुम ऐसा करते थे, गोपिका ऐसा करते थे। अब चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं नीलाचल वापिस आना चाहिए, कि हमें वृंदावन घूम लिया अभी वापिस आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं कि तुम वहां तो थे पर यहाँ कैसे पहुंच गए, उसके बारे में बोल रहे हैं। महां बोधे तीरा कना करुचिर नीला शिखारे वसन प्रसादं ता सहज बलभद्रिना बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सक लसुर सेवा वसर अदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। यहाँ बोल रहे महा अम्बधो, अम्बधा माने समुद्र, महासमुद्र। अब यह नीलाचल धाम कैसा है? महासमुद्र के तीरे। अभी वृंदावन कालिंद तीरे की बात हो रही थी, अभी हम लोग वापस नीलाचल धाम आ गए। तो बोलते यहाँ तुम कैसे हो? महा अम्बधे तीरे, समुद्र के तीर के पास में कनक रुचिरा। ये जो नील शिखर है, ये जो नील पर्वत है, वो देखने में कैसा लगता है? गोल्डन कलर, एकदम कनक रुचिरा, इस तरह से चमकता है जैसे कि सोने का शिखर हो। बोलते महा अम्बधे तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे, उस तरह के नील शिखर पे तुम हो। वसना, वसना माने तुम वहां रहते हो। किसके साथ? सहज बलभद्रेना बलिना, तुम्हारा जो बड़ा भाई है, जो बहुत बलशाली है, उसके साथ तुम वहां हो। और बीच में कौन है? सुभद्रा मध्यस्थ, सुभद्रा बीच में बैठी है, तुम्हारा भाई जो शक्ति वाला है पास में है, समुद्र के तीर के पास, नील शिखर के ऊपर जो सोने जैसा चमकता है, तुम बैठे हो। ऐसे चैतन्य प्रभु बैक टू नीलाचल आ गए, जगन्नाथ जी के सामने, जगन्नाथ जी के सामने खड़े हुए ये कह रहे हैं। उसके बाद एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं, बोलते यहां तुम क्यों आए, तुम्हारा क्या काम था, तुम वृंदावन में थे, खुश थे, यहाँ किस लिए तुम पहुंच गए? इसका कारण बता रहे, सकल सूर सेवा अवसर दो, सेवा का अवसर देने के लिए तुम आए हो। क्योंकि वृंदावन में तुम्हारे पास किसी की सेवा लेने का समय नहीं था, तुम बहुत बिजी थे माखन चोरी में, रासलीला में, कितने सारे तुम्हारे खेल थे, कभी कालिया के ऊपर में नाच करना, कभी यमुना में नहाना तैरना, तुम्हारे पास समय नहीं था। इसका प्रूफ क्या है? अभी तो पुरुषोत्तम महीना पूरा हमने क्या किया? ब्रह्मा की स्तुति का पारायण किया। ब्रह्मा की स्तुति में कितने? अराउंड 40 श्लोक। और ब्रह्मा खड़ा खड़ा स्तुति करता रहा, भगवान ने कोई रेस्पॉन्स दिया? कोई रेस्पॉन्स नहीं। भगवान इस तरह से ब्रह्मा की तरफ देख रहे थे जैसे कि ये चार मुख वाला क्यों खड़ा है, इसको क्या काम है और क्या बकबक कर रहा है, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये बकबक बंद करे तो हमें बहुत सारे काम है, हमको तो खेलना है। तो यहां ब्रह्मा स्तुति करते जा रहे हैं। अब देखिए इंद्र की स्तुति पे भगवान का रेस्पॉन्स है, ब्रह्मा की स्तुति पे भगवान का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। तब इमेजिन करिए ब्रह्मा को कैसे लगता होगा। तो ऐसा बात हो गया कि आप अपने घर में किसी को प्रसाद के लिए बुलाओ, खाना के लिए बुलाओ, और फिर वो पर्सन कोई कमेंट ही ना दे कि आप इतनी सारी आइटम बनाया, इतना कुछ किया, और उसका कोई कमेंट ना हो, तो फिर कभी कभी शर्म से आप ही पूछ लेते हो, अच्छा लगा प्रसाद, अच्छा था, ठीक है, कि कमेंट तो दिया नहीं, प्रेस तो किया नहीं, मैं ही पूछ लेती हूँ कैसा लगा, अच्छा लगा क्या। अब यहाँ पे ब्रह्मा की स्थिति ऐसी है, इतना मैं सुंदर स्तुति कर रहा हूँ, इतने सुंदर सुंदर बोल रहा हूँ, भगवान का कोई रेस्पॉन्स नहीं। तो वृंदावन में तो उनके पास टाइम ही नहीं है किसी का भी सेवा लेने के लिए, वो बहुत बिजी है, तो कहाँ जाके उनकी सेवा करे। तो यहाँ जगन्नाथ जी क्या हुआ, आके खड़े हो गए, बोले आओ सेवा करो, जितना बार खिलाओगे खाऊंगा, जितना बार मेरे दर्शन करना चाहते हो करो, बंद नहीं होता है जगन्नाथपुरी का टेम्पल। इस बार हम जगन्नाथपुरी गए तो वहां पे वो कौन बोल रहा था हमें, पुजारी बोला 12 बजे के दर्शन में आई है, बहुत रात के 12 बजे की बात कर रही हूँ, वो रात के 12 बजे के दर्शन में आई है, बहुत सुंदर दर्शन होगा। तो पूरा दिन दर्शन देने के लिए तैयार, आशीर्वाद देने के लिए तैयार, सेवा लेने के लिए तैयार। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है सेवा अवसर देने के लिए तुम यहाँ आके बैठ गए हो। किसको दोगे सेवा का अवसर? लिखा है सूर, सूर माने देवताओं को, सूर माने भक्तों को, सूर माने जो अच्छे हैं, जिनका दिल अच्छा है, इंग्लिश में बोला जाए तो गुड सोल्स, अच्छे लोग, भक्त लोग। अच्छे माने कौन अच्छा है? इस दुनिया में भक्त ही अच्छे हैं, जो भक्त है वो अच्छे है। तो जो भक्त है, वो जो देवता लोग है, उनकी सेवा लेने के लिए तुम यहां आए हो। इसे तो बहुत प्रसिद्ध बात है ना, कहते हैं कि भगवान बद्रीनारायण बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारका में जाके सजते हैं सारा एकदम सोना चांदी वगैरह, और फिर जगन्नाथपुरी में आके खाते हैं, और फिर श्रीरंगम में सो जाता है। किसी ने पूछ लिया कि भैया आपके भगवान सिर्फ खाते सोते रेडी हो जाते हैं, क्या कमाते वमाते नहीं क्या कुछ भी? मैंने कहा भैया कमाने के लिए तिरुपति जाते हैं, कमाने के लिए तो तिरुपति जाते हैं, अब वहां जाके देखो उनकी हुंडी काउंट करने के लिए भी हजारों लोग बैठे हैं, तो कमाना उनका तिरुपति का है, बाकी सब जगह खाना पीना और सोना। तो भगवान क्या करते हैं, सेवा का अवसर देने के लिए वो खड़े हुए हैं। यहाँ भगवान सेवा लेते हैं भक्तों से। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे सी जगन्नाथपुरी धाम की एक विशेष महत्व है। अब हर एक धाम में एक एक भाव प्रकट होता है। द्वारका में ऐश्वर्य लीला, माँ द्वारकाधीश, इतनी सारी पटरानियां। वृंदावन में माधुर्य लीला गोपिकाओं के साथ में। लेकिन जगन्नाथपुरी एक ऐसा धाम है जिसमें तीनों भाव, औदार्य भाव, माधुर्य भाव और ऐश्वर्य भाव, तीनों का सम्मेलन है। कैसे हो गया तीनों का सम्मेलन? जगन्नाथ जी है कौन, आप बताइए कौन है जगन्नाथ जी? नहीं, मुझे स्पेसिफिक आंसर चाहिए। द्वारकाधीश, द्वारकाधीश है ना जगन्नाथ जी? कौन है द्वारकाधीश? जगन्नाथ जी कैसे बन गए? वो तो द्वारकाधीश है। द्वारका में रोहिणी माता कथा बता रही थी, तो बताने के बाद फिर उनका फॉर्म ट्रांसफॉर्म होके वो जगन्नाथ बन गए। तो उसका मतलब है कौन वो? द्वारकाधीश। माने ऐश्वर्य भाव। लेकिन वो द्वारकाधीश से जगन्नाथ क्यों बन गए? क्या सुन रहे थे? वृंदावन की लीला। उसका मतलब मन में क्या है? वृंदावन भाव, माने माधुर्य भाव। तो हो गया है ऐश्वर्य भाव में, बहन और भाई के साथ बैठे हैं। हृदय कहाँ है? माधुर्य भाव में। कर क्या रहे हैं? सबके ऊपर दया, माने औदार्य भाव। तो जगन्नाथ जी का अगर आप रूप देखो तो माधुर्य, औदार्य और तीनों भाव का सम्मेलन है। इसलिए जगन्नाथ पूरी धाम जो है वो बहुत ही विशेष धाम है। अच्छा, जगन्नाथ पूरी क्यों बोलते हैं हम? माता जी वहां पे पूरी खाते हैं क्यों? पूरी का मतलब क्या है? अयोध्या पूरी, काशी पूरी, द्वारका पूरी, जगन्नाथ पूरी। हाँ, छोड़ दीजिए, इतना सारे आप लोग का गैस जरूरत नहीं। पूरी मतलब जहां परम पुरुष, जहां पे परम पुरुष भगवान नित्य शयन करते हो, नित्य रहते हो, सेवा लेते हो, उसको बोलते हैं पूरी। इसलिए तो हर जगह पूरी नाम ऐड कर देते हैं। फिर आप बोलेंगे माता जी माधवेंद्र पूरी क्यों? नहीं, जिसके हृदय में परम पुरुष भगवान निवास करते हो उस भक्त को भी ऐसा बोल सकते हैं क्या? पूरी पाद या जो उनको बोलते हैं हम, समझ में आई बात? तो इसलिए जो भगवान के धाम होते हैं उनको ये नाम लगा दिया जाता है पूरी। अयोध्या पूरी, कांची पूरी, काशीपुर, जो भी है, जो भी जहां पे भगवान निवास करते हो, भगवान सेवा लेते हो, शयन करते हो, उनको बोला जाता है पूरी। तो ये जगन्नाथ पूरी जो धाम है बहुत ही विशेष धाम है। और श्रील प्रभुपाद और गुरु जी के असीम कृपा के वजह से पुरुषोत्तम महीनों में हमने इस जगन्नाथपुरी धाम का दर्शन किया और जगन्नाथ जी का हमने दर्शन किया। महान बोधे तीरा कना करुचिर नीला शिखारे वसन प्रसादंता सहज बल भद्र नाबलीना सुभद्रा मध्यस्थ सक लसुर सेवा अवसर दो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवा तुमी कृपा पारवार सज लजल दश्रेणी रुचिरो रमावानी रामा स्पुरात अमाला पंखे रुमुखा सुरेंद्रेर आराध्या श्रुति गणाशी खगी तचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवा तुमी कृपा परवार। कृपा परवार माने अशेष कृपा, कृपा के सागर है जगन्नाथ जी। यहाँ पे एक दो बूंद कृपा की बात नहीं हो रही, कृपा के सागर है आप। कृपा परवार सजल जलदा, सजल जलदा माने आपके शरीर का रंग कैसा है? जैसे जल से भरा हुआ बादल। सजल जलदा श्रेणी रुचिरो, श्रेणी माने एक बादल नहीं, बहुत सारे बादल। बहुत सारे बादल जब जल से भर जाते हैं तो कैसे लगते हैं, वैसे आपके शरीर का रंग है रुचिरो, माने सुंदर आप देखने में है। रमावानी रमह, रमावानी रमह माने लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी जिनके कहने पे जीवों की रक्षा करते हैं। लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी जीवों की रक्षा कैसे करते हैं, उनको धन धन देके, उनको ज्ञान देके उनकी सेवा करते हैं। तो जिनके कहने पे लक्ष्मी और सरस्वती सेवा करते हैं। और स्पुरद अमल पंखेरु मुख, जिनका मुखमंडल एक विकसित कमल जैसा है, स्पॉटलेस एकदम, उसपे कोई दाग नहीं है, उतना सुंदर है जगन्नाथ जी का मुखचंद्र। बोलते हैं सुरेंद्रेर आराध्या, सुरेंद्रेर आराध्या माने सुरेंद्र माने देवता लोग, लेकिन कैसे देवता लोग, थोड़े हाई कैटेगरी के देवता लोग भी जिनकी पूजा करते हैं, माने जिनके बड़े बड़े नाम है, जैसे यमराज या कुबेर या इंद्र, जो बड़े बड़े देवता लोग हैं जिनकी पूजा करते हैं। और श्रुति गाना, श्रुति माने वेद, वेद भी जिनके गीत का, जिनके चरित्र का गान करते हैं, गीत माने गाना गाते हैं। यहाँ पे लिखा है श्रुति गण शिखा गीत चरित्र, शिखा माने शिखा जैसे है ऊपर, जो ऊपर की ओर है शिखा, माने वेदों में भी जिनका गुणगान एकदम उत्तम स्थाई में होता है, ऐसे श्री जगन्नाथ स्वामी को हम निवेदन करते हैं। क्या जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवा तुमी, मेरे नैनों के सामने आप हमेशा रहो। नेक्स्ट श्लोक, रथ रूढ़ गच्छन् पति मिलिता भूदेव पताले स्तुति पादु भावं प्रति पदम उपाकर्ण्या सदया दया सिंधु बंधु सकल जगतम सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पाथगामी भवा तुमी। यहाँ पे बोल रहे हैं रथारूढ़ो गच्छन्, अभी चैतन्य महाप्रभु बात कर रहे हैं रथ यात्रा की, क्या है वो, क्या बोल रहे कि जब तुम रथ पे बैठते हो स्वामी जगन्नाथ स्वामी, जब आप रथ पे बैठते हैं तब क्या होता है, रथारूढ़ो गच्छन् माने चलना, पथी माने रास्ते में, मिलित माने मिलना, किनको मिलते हैं, भूदेव, भूदेव माने कौन है, भू माने भूमि, भूमि में जो देव, देव का मतलब है जो पूजनीय है, इसलिए भी जो भी पूजनीय होते हैं उनके पास हम देव लगा देते हैं, जैसे कि मातृदेव पितृदेव गुरुदेव, देव माने जो पूजनीय है। तो इस भू प्रपंच में या इस भू भूमि में कौन है जो पूजनीय है, जो भगवान के भक्त है, या यहाँ पे भूदेव का डायरेक्ट मीनिंग संस्कृत में है ब्राह्मण, पर ब्राह्मण से हमारा ये मतलब नहीं है जो ब्राह्मण जाति में जन्म लिए है, ब्राह्मण माने जो सच में ब्राह्मण, माने जिसका जन्म भगवान की सेवा के लिए ही है, जिसने शरीर स्वीकार किया है भगवान की सेवा करने के लिए, जो भगवान का प्रसाद लेता है, जो भगवान का गुणगान करता है वो ब्राह्मण है, उनका नाम यहाँ पे भूदेव बोला गया है। तो बोलते हैं कि जब आप रथ पे बैठ जाते हो और आपका रथ चलता है रास्ते में धीरे धीरे, और रथ में चलते चलते आप बहुत लोगों को मिलते हो, और मिलते मिलते जो ब्राह्मण लोग आपको जो रास्ते में मिलते हैं वो आपका चरित्र के गुणगान करते हैं, और जब वो आपकी स्तुति करते हैं तब आप बड़े आराम से सुनते हो उनकी बात। यहाँ पे लिखा है स्तुति पादुर्भावम, जो आपकी स्तुति करते प्रतिपदम, जैसे जैसे रथ थोड़ा थोड़ा आगे चलता रहता है वैसे हर जगह कोई ना कोई भक्त स्तुति करता ही रहता है, और तब आप क्या करते हो उपाकर्ण्य, कर्ण माने कान से, अच्छे से सुनते हो सदा हमेशा, ऐसा कभी नहीं बोलते कि आज तो टाइम हो गया नेक्स्ट रथ यात्रा में सुनूंगा, ऐसा नहीं, हमेशा सुनते हैं। जब आप रथ में निकलते हो बाहर भक्तों को दर्शन देने के लिए, तब कोई भी भक्त हो, कोई भी धर्म का हो, कैसा भी, कोई भी कास्ट का हो, ऐसा कोई आपका भाव नहीं, सबकी स्तुति आप बहुत आराम से सुनते, और आराम से ही नहीं कभी कभी जब भक्त लोग स्तुति करते हैं तो अब जब आप गाड़ी में चलाते हो तो क्या होता है, गाड़ी के जो चक्र है ना, रथ चक्र, उससे वो आवाज आती है ना चक्र की, गर गर गर, तो कभी कभी आवाज आने से आप रुक जाते हो, आप ड्राइवर को बोलते हैं रोको, मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से क्या स्तुति कर रहा है, गाड़ी रोको, यही होता है ना। इसलिए तो आप देखो अगर जगन्नाथ जी की कथा में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता है बीच में बिना कोई कारण के, और कितने भी लोग मेहनत करे, खींचे, कुछ भी करे, अगर आप देखो तो ब्रिटिश जर्नल में भी ऐसे बहुत बार एंट्रीज आई है कि जगन्नाथ जी के रथ को कोई हिला नहीं सका, कभी कभी कुछ दिन हो गए, कभी एक महीना हो गया और रथ को हटा ही नहीं पा रहे, हाथियों को बुलाया, कितने लोगों को बुलाया और रथ नहीं चल रहा है आगे, फिर सडनली चलने लगता है रथ, तो उसका आंतरिक भाव चैतन्य महाप्रभु बता रहे हमें तो पता नहीं क्यों रुक जाता है ये रथ, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम ये है कि कोई भक्त स्तुति कर रहा है, वो स्तुति ठीक से सुनाई नहीं दे रही हो रथ का आवाज होने से, इसलिए बोलते गाड़ी रोको मैं ठीक से सुनूंगा वो क्या स्तुति कर रहा है। तो एक भक्त था, मुस्लिम भक्त था, उसका नाम था साला बेग। अब ये साला बेग की पिता जो थे वो मुसलमान थे, लाला बेग वो बंगाल के कोई ऑफिसर थे, और फिर वो जो है जगन्नाथपुरी में ललिता नाम की कोई ब्राह्मण विधवा से शादी करते हैं, तो ये तो जगन्नाथ की भक्त है लेकिन ये मुसलमान है, तो अब जब पति मुसलमान है तो ये भी जो है ये लोग मुस्लिम बन जाते हैं, तो उनका जो पुत्र है साला बेग उसको बचपन से जो है जगन्नाथ जी की ओर आकर्षण था, क्योंकि उनकी माता हिंदू थी। तो जब एक बार उनके पिता का देहांत होने के बाद जब साला बेग के शरीर ठीक नहीं था, तब जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने के द्वारा उनका शरीर ठीक हो जाता है, तो उनको जगन्नाथ जी के ऊपर में बहुत ज्यादा फेथ या जो है विश्वास बढ़ जाता है, और जगन्नाथ जी के पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं है क्योंकि वो मुसलमान के बेटे हैं, तो वो हमेशा इंतजार करते हैं कि साल में एक बार कब जगन्नाथ जी बाहर आएंगे रथ पे और वो उनका दर्शन कर सकेगा। और उन्होंने इतने सुंदर भजन रचना की है उड़िया भाषा में जगन्नाथ जी के बारे में, उनका गुणगान करते हुए, तो उनके भजन जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है सुनने में इतने सुंदर से। तो ऐसा एक बार ऐसा हुआ कि साला बेग वृंदावन गए थे, और वृंदावन में भगवान का दर्शन करने के बाद वो वापस पूरी आ रहे थे, क्योंकि उन दिनों में वहां पे औरंगजेब बहुत सारी जो है भगवान की प्रतिमाओं को, मूर्तियों का खंडन कर रहा था। तो जब वो वापस आ रहे थे तब उन्हें याद आया कि अरे आज तो रथ यात्रा का दिन है, तो पूरी में तो रथ यात्रा चल रही होगी, जब तक कि मैं पहुंचूंगा रथ यात्रा खत्म हो जाएगी, तो जगन्नाथ जी वापिस अपने गर्भगुड़ी में अपने ऑल्टर में चले जाएंगे, तो मैं उनका दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो यहां से भगवान को गाते हुए जो है ऑर्डर देते हैं कि तुम चले मत जाना, थोड़ा सा रुको मैं आता हूं, चला मत जाना। तो क्या करते भगवान रुक जाते हैं, सालाबेल की जो झोपड़ी या जो उनका घर था उसके पास में रथ रुक जाता है। अब यहां पे किसी को समझ में नहीं आ रहा कि रथ हिल क्यों नहीं रहा है, तो सारे कोशिश कर रहे, कितना कोशिश कर रहे, लेकिन जगन्नाथ जी हिल नहीं रहे, वहीं पे इंतजार कर रहे, क्योंकि भक्त ने ऑर्डर दिया है कि वहीं खड़े रहो मैं आऊंगा देखने के लिए, तो वहां पे खड़े है। फिर जब साला भी एक भागा भागा आता है, देखता हाँ अभी भी भगवान है, तो फिर जो है वहां पे उनकी स्तुति करता है और भजन करता है। और जब साला भी को जितना मन में गाना गाना था, जो भी करना था, सब कुछ उसने कर लिया, उसके बाद रथ जो है मूव होता है। अगर आप देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जीवन में भी, जब वे बहुत छोटे बच्चे थे, अभी जिस जगह पे चैतन्य गौड़ीय मठ है उस जगह पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का घर था, या वो वहां पे निवास करते थे, तो जब वो बहुत छोटे थे तब उनके घर के पास भी रथ रुक गया था, क्योंकि सब लोग तो दर्शन कर पा रहे थे लेकिन वो बहुत छोटे थे तो उनको दर्शन के लिए नहीं लेके गए थे, लेकिन जब देखा कि कुछ दिनों तक रथ वहीं रुक गया तो उनकी माँ को ख्याल आया कि रथ तो हमारे घर के सामने ही रुका पड़ा है, तो चलो मैं इनका मेरे बेटा का दर्शन करवा देती हूँ। तो छोटा सा था तो गोद में लेके उनकी माँ जो है गई और उनको पुजारी को हाथ में दिया कि जरा मेरे बेटे को भगवान का जो है पाद पद्म के पास रख दो या भगवान के चरणों का आशीर्वाद दिला दो। तो पुजारी ने उनको लिया और जगन्नाथ जी के पास में रखा, जैसे जगन्नाथ जी के पास में रखा, जगन्नाथ जी के गले में जो बड़ी सी माला थी वो एकदम गिर के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गले में गिर गई, और उसके बाद ही रथ फिर चलने लगा। तो ऐसा ऐसी तो बहुत सारी पास्ट टेंस है, फिर तो हमारा श्लोक यही रुक जाएगा कि भगवान जगन्नाथ जी भक्तों की स्तुति सुनने के लिए रथ जो है रुका देते हैं। ऐसे बहुत बार हम सुनते हैं कि रथ को वो थमा देते हैं क्योंकि वो सुनना चाहते हैं ठीक से अपने भक्त क्या स्तुति कर रहे हैं। और एक बार ये गाते हुए नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। रथारूढ़ गच्छन् पति मिलिता भूदेव पताले स्तुति पादु भावं प्रति पदमुपाकर्ण्या सदया दया सिंधु बंधु सक जगतं सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नायन पाथगामी भवतु मे। यहाँ पे एक लाइन हमने बोली नहीं, स्किप कर दी, दया सिंधु। ऐसे जगन्नाथ जी क्या है, दया सिंधु है, दया के सागर है। बंधु सकल जगतम, सबके बंधु है, सबके मित्र है जगन्नाथ जी। और किनके साथ मुझे उनका दर्शन करना है, तो लिखा है सिंधु सुतया। सिंधु माने समुद्र, सुतया माने समुद्र की बेटी। कौन है समुद्र की बेटी? लक्ष्मी देवी। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि लक्ष्मी देवी के साथ मैं जगन्नाथ जी आपका दर्शन करना चाहता हूँ। नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। पर ब्रह्म पीड़ा कुवा लया दलोता फूल नयनो निवासी नीलाद्रो निहिता चरणो नंता शिरसी रसानंदो राधा सर सब पूरा लिंगान सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। यहाँ पे बोल रहे हैं पर ब्रह्म माने जो सर्वश्रेष्ठ भगवान, कुवल माने कमल, दलोत फूल नयनो आपकी जो नयन है फूले हुए नयन है। देखिए जगन्नाथ जी के नयन फूले हुए लग रहे हैं ना, एकदम बड़ा बड़ा बड़े बड़े आंख, ऐसे फूले हुए नयन के साथ जब आप रथ के ऊपर बैठ जाते हो हर एक जीव को आप देखते हो, कोई भी मिस नहीं होता है। हाँ, कोई मिस होने का चांस है? दामोदर की आंखें छोटी है लेकिन जगन्नाथ की आंखें बहुत ज्यादा बड़ी है, और बड़ी तो है और आई लैशेस भी नहीं है, तो एक दो बार ऐसा ऐसा भी नहीं करते, एकदम सब समय हम लोग के सामने जो है देखते रहते हैं। तो बोलते हैं कि फूल नयन, उनके बड़े बड़े फूले हुए नयन है। निवासी नीलाद्रो, तुम रहते कहाँ हो? नीलाद्री, नीलाचल में तुम रहते हो। निहित चरणो, ठीक है तुम नीला में रहते हो, तुम्हारे चरण कहाँ रहते हैं? तो बोलते अनंत शिरसी, किसके सिर पे रहते हैं? अनंत शेष के सिर पे आपके चरण रहते हैं। और फिर आप करते क्या हो? रसानंद राधा, रसानंद राधा माने रस का आनंद प्रदान करने वाली राधा को आप क्या करते हो? सरस वपुर, उनके सरस शरीर को आप आलिंगन करते हो। और जब आप उनका आलिंगन करते हो तो क्या होता है? सुखो, आपको बहुत ज्यादा सुख मिलता है। रसानंदी राधा के शरीर को जब आप आलिंगन करते हो तब आपको बहुत सुख मिलता है। ऐसे श्री जगन्नाथ स्वामी से मेरी प्रार्थना है कि आप जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे, हमेशा मेरे नयनों के सामने रहो। नेक्स्ट श्लोक। न वैयाचे राजं न च कनक माणिक्या विभावम् न याचे हम राम्यम सकल जनकाम्यवरवधुम् सदा काले काले प्रमथपति नगी तचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। हमारा फेवरेट क्या होता है? स्तुति करने के बाद हम चाहते हैं भगवान से कुछ मांगना। यहाँ पे अब वो लाइन आ गई, लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रोल में बोल रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, हमें सिखाने के लिए कि हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए तुमको? हाँ, जैसे स्तुति करते हो भगवान को तो पता है इसको अभी कुछ चाहिए, बोला तुम बहुत मस्का लगा लिया, बोलो तुमको क्या चाहिए। तो बोले नहीं नहीं देखिए मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या नहीं चाहिए? राज्यम, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे पैसा धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। ना चाह कनक माणिक्य, मुझे सोना चांदी हीरा मोती मुझे नहीं चाहिए। वही विभवम, विभवम माने ज्यादा क्वांटिटी में मुझे नहीं चाहिए, मतलब ज्यादा ज्यादा मैं नहीं मांग रहा हूँ, थोड़ा भी नहीं मांग रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा मेरे ट्रांसलेशन से, मुझे नहीं चाहिए वही बोल रहे। न याचे हम रम्यम सकल, रम्यम माने सुंदर, सॉरी रम्यम माने सुंदर पत्नी। और कैसे सुंदर पत्नी, यूजुअली कौन चाहता है सुंदर पत्नी, सकल जन काम्यम, हर एक पर्सन चाहता है सुंदर पति, महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में या सुंदर पत्नी पुरुषों के कॉन्टेक्स्ट में। तो बोलते कि मुझे नहीं चाहिए। सी माया का प्रोडक्ट क्या है, ये तीन चीजें है ना, मनी, पैसा, वुमेन, स्त्री, या तो नेम फेम, कोई प्रसिद्धि, ये तीन ही है माया का एजेंडा। सी हर बार माया पैकेज बदलती है लेकिन इंग्रेडिएंट सेम ही होता है, उसका मार्केटिंग वो एक ही तीन चीजें करती है, उसके पास बेचारी नया प्रोडक्ट भी नहीं है, प्रोडक्ट वो तीन प्रोडक्ट ही है, वो तीन प्रोडक्ट को ही कभी इस कलर में, कभी उस पैकेज में, कभी इस पैकेज में करके हमें बुलाती कि आओ आओ ले लो मुझसे। एडवर्टाइजमेंट टेक्निक्स वो बदलती रहती है लेकिन प्रोडक्ट उसके पास सिर्फ तीन है। तो इसलिए यहाँ पे क्लैरिफाई करें कि मुझे इस माया के तीनों प्रोडक्ट में रुचि नहीं है, ना मुझे सुंदर स्त्री में रुचि है, ना मुझे पैसा धन दौलत में, या कोई नाम में या ऐश्वर्य में मुझे कोई रुचि नहीं है। क्या है वर वधुम, वर वधुम माने वर माने श्रेष्ठ, माने वो नॉर्मली सिर्फ एक सुंदर नारी की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी नारी की बात कर रहे हैं जिसमें हर एक गुण हो। सी नारी माने सुंदरता ही उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, कितनी सारी गुण, आज्ञाकारी या अलग अलग जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं, गुणकारी, आज्ञाकारी। तो बोल रहे हैं कि अगर ऐसी भी नारी हो, सपोज नॉट ओनली सुंदर, आज्ञाकारी हो और बहुत ज्यादा अच्छे गुणों से हो, फिर भी मुझे नहीं चाहिए वर वधुम, ऐसी ऐसी पत्नी भी मुझे नहीं चाहिए। तो फिर ठाकुर जी पूछेंगे फिर तो तुमको क्या चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ओके नेक्स्ट तुमको क्या चाहिए। तो बोल रहे सदा काले काले, काले काले माने एवरी मिनिट, एवरी सेकेंड, हर पल, काले काले, काल माने समय, हर समय 24 घंटा मुझे चाहिए, क्या चाहिए। प्रमथ पति न गीत चरितो, प्रमथ माने भूत प्रेत, भूत प्रेत हमें नहीं चाहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन सुनिए। प्रमथ पति माने जो भूत प्रेत के पति है, कौन है वो, शिव जी। और शिव जी क्या करते हैं, गीत चरितो, क्या गाते हैं, भगवान का चरित्र। तो हमें क्या चाहिए, जो जिस भगवान का गुणगान शिवजी काले काले करते हैं, ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवा तुमी, ऐसे जगन्नाथ जी मेरे मन में हमेशा, मेरे आंखों के सामने आप हमेशा रहिए। बहुत ही सुंदर श्लोक है कि भगवान की स्तुति कैसे करना चाहिए, ये मांगना चाहिए हमें भगवान के पास कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं हमेशा आपकी विस्मृति ना हो। भक्तों के लिए सबसे बड़ा दुख है जब भगवान की विस्मृति हो जाती है, हम जब भगवान को भूल जाते हैं। हमें भगवान को मांगना चाहिए कि हमेशा आपका स्मरण हो, मैं कभी नहीं भूलू आपको, एक मिनट के लिए भी मैं कभी आपको ना भूलू, ये मांगना चाहिए भक्त को। जब नरसिंहदेव प्रसन्न होते हैं प्रहलाद को, तो नरसिंहदेव क्या बोलते हैं प्रहलाद को, बोलते तुम कुछ मांगो, प्रहलाद बोलते मुझे कुछ नहीं मांगना है। वो फिर रिक्वेस्ट करते हैं, शायद तुम्हें नहीं मांगना है लेकिन मुझे देना है, कुछ तो मांगो। और तब प्रहलाद गुस्सा हो जाते हैं, मैंने पढ़ा है भागवत में ये, वो गुस्सा आके बोलते हैं कि क्या सोचते हो, मैं बिजनेसमैन हूं, बनिया हूं, मैं आपसे बिजनेस करने आया हूं, मैंने थोड़ा सा आपका भक्ति किया इसलिए आप अभी मुझे कुछ देंगे, मैं लेने के लिए नहीं आया हूं, मैंने आपकी प्यार से भक्ति की है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई भगवान उसको फोर्स करते कुछ तो मांगो, फिर वो बोलते ठीक है मांगता हूं, तो मुझे कभी भी कुछ भी मांगने की इच्छा ना हो ऐसा वर दो, मुझे कभी भी कुछ मांगने की इच्छा ना हो ऐसा मुझे वर दो। कितनी सुंदर बात है, हमें ऐसा बोल दे तो हमारी लिस्ट खत्म ही ना हो, हम बोले एक मिनट 24 आवर्स टाइम चाहिए लिखने में, बोलते मुझे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो ऐसा मुझे वर दो। तो ये हमें भगवान से मांगना चाहिए। अब बोलेंगे माता जी नहीं होता है, पता नहीं क्यों नहीं जाती है मेटीरियल डिजायर्स, कुछ ना कुछ इच्छा हो ही जाती है। कितना भी सोचूं लगता है ये नहीं मांगूंगा, लेकिन ये तो मांगना ही पड़ेगा, ये मुझे जरूरत है। क्यों नहीं जाती है मांगने की इच्छा? क्योंकि भक्ति और ज्ञान अभी तक प्रकट नहीं हुआ हृदय में। क्यों नहीं प्रकट हो रहा है भक्ति? क्यों नहीं प्रकट हो रही है? ज्ञान क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? हम जब भगवान के बारे में सुनेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तब धीरे धीरे ये ज्ञान प्रकट होता है। भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में, ज्ञान दीपेना, मैं देता हूं तुमको ज्ञान का दीप। पर प्रार्थना तो करो, हम तो मांग भी नहीं रहे ना। हमें ये मांगना है, जैसे प्रहलाद ने मांगा ना कि मैं ये मांगता हूं कि मुझे मांगने की इच्छा ना हो। कि कभी किस हम कभी मांगते ऐसा कि हमें मांगने की इच्छा ना हो, भगवान ऐसा हमें बुद्धि दो, ये हमें मांगना चाहिए। माता जी ओरिजिनली नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो आर्टिफिशियली कर लो इसको ऐसे ही, जैसा अभी ये श्लोक है तो इसको ही न वही अवाचे राज्य में सब बोलते रहो रोज रोज भगवान के सामने। हमें ऐसे बोलना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ भगवान तो समझता है कि इसको सब कुछ चाहिए, वो सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है, एक्टिंग कर रहा है, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर रोज जाके उनके सामने खड़े रहकर ऐसे एक्टिंग करते रहेंगे ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान एक दिन बोलेंगे ठीक है चलो तुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ तेरा सारी इच्छाएं ले लेता हूं। लेकिन बोलो तो सही, हम बोल भी तो नहीं रहे ना, बोल भी तो नहीं रहे। जैसे हिंदी सिनेमा में दिखाते हैं ना, वो कभी सांप वाप डस ले हीरोइन को, तो फिर वो चिल्लाती है बचाओ बचाओ, फिर हीरो आके बचाता, चिल्लाती है ना बचाओ बचाओ, नहीं चिल्लाएगा तो हीरो आएगा क्या? तो हमें चिल्लाना तो चाहिए ना कि बचाओ, हम तो बोल भी नहीं रहे भगवान को बचाओ, हम तो कंफर्टेबल हो गए हैं। सांप ने काटा है हमें, माया के सांप ने काटा है, लेकिन हम कंफर्टेबल है, तो वो फिर वो आए, हीरो की एंट्री कब होगी? हीरोइन को तो चिल्लाना पड़ेगा ना बचाओ, ये हमें चिल्लाना शुरू करना है कि मुझे बचाओ, मैं ये जो सर्प मुझे काट रहा है ना, माया का, मोह का, अहंकार का, मद का, सबके ऊपर जो मेरी ये ईर्ष्या का, मुझे ये जो काट रहा है, प्लीज मुझे बचाओ, तो भगवान पक्का बचाएंगे। ये प्रभुपाद जी बोलते थे कि लोअर टेस्ट को छोड़ने के लिए पहले हायर टेस्ट अपनाओ, तभी जाके लोअर टेस्ट छूटेगा। किसी बच्चे के हाथ में कोई खिलौना है और आपको उस बच्चे से वो खिलौना लेना है, तो वो नहीं देगा, कुछ भी हो जाए वो नहीं देगा। लेकिन आप उसको कोई चॉकलेट दे दो, डेरी मिल्क दे दो, कुछ तो उसको दिखा दो, फिर वो चॉकलेट पकड़ेगा तो ये टॉय छोड़ देगा। उसी तरह से पहले हमें हायर टेस्ट अगर हम अपनाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये लोअर टेस्ट चला जाएगा। हायर टेस्ट अपनाना माने भगवान के भक्तों के साथ संग करना, भगवान का प्रसाद लेना, अच्छा लगे ना लगे प्रवचन में बैठना सुनना, अच्छा लगे ना लगे गीता भागवतम का अध्ययन करना, अच्छा लगे ना लगे जप करना, अच्छा लगे ना लगे प्रसाद तो अच्छा ही लगता है खाना, अच्छा लगे तो प्रसाद खाना, प्रसाद तो खाएंगे ही, हम तो हमेशा अच्छा लगता है प्रसाद, बस उतना ही करना है। वो हम धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे लोअर टेस्ट चला जाएगा। सी आप अगर किसी को बोलो ही तुम देखो टीवी मत देखो, तुम जो है सिनेमा मत देखो, तुम जो है रेस्टोरेंट्स में मत जाओ, तुम जो है बैठो घर में और जब करो, तो उससे नहीं होगा। उसको क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है। तुम रेस्टोरेंट्स में जाके नहीं खाते हो, इस्कॉन में आके संडे फिश खाओ, फिर जब वो प्रसाद खाते खाते धीरे धीरे वो टेस्ट चला जाएगा। तुम इस्कॉन में आओ बैठो भागवत सुनो, भागवत में अलग अलग कथाएं सुनो, तो फिर उसका जो है सिनेमा वगैरह देखने का टेस्ट चला जाएगा। धीरे 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 हायर टेस्ट आने के बाद में लोअर टेस्ट चला जाएगा। और जैसे ही भगवान की श्रवण कीर्तन बढ़ेगा, भक्ति बढ़ेगी, तो धीरे धीरे कामनाएं इच्छाएं कम हो जाएगी। सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले क्या बोला भागवत में, जब उन्होंने भगवान के कृष्ण की लीला का शुरू किया वर्णन करना, तब उन्होंने बताया कि जो भगवान की लीला का सुनते हैं ध्यान पूर्वक, तो उसका सिम्टम कैसे पता चलेगा कि आपने 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 ठीक से भगवान का लीला सुना, तो सिम्टम क्या है, बोलते सिम्टम क्या है, इच्छाएं कम हो जाती है, भक्तों पे प्रीति बढ़ जाती है, भक्त लोग अच्छे लगने लगते हैं, अच्छा लगता है भक्तों के साथ रहना, अच्छा लगता है, और तृष्णाएं आश ये जो इतना ज्यादा भौतिक इच्छाएं कम हो जाएगी। अगर सुनने के बाद भी भौतिक इच्छाएं कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है, उसका मतलब तुम कुछ तो गलत कर रहे हो, तुम शायद सही से सुन नहीं रहे हो, मन देके शायद तुम सुन नहीं क्योंकि मन देके सुनोगे तो क्या होगा, इच्छा तो कम होगी ही, मन देके नहीं। सी हमारा मन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी हर एक इंद्रिय मन से कनेक्टेड है, बिना मन के वो इंद्रिय काम नहीं करती। आपका कान हो, आंख हो, सब कुछ मन से चलता है। आज आप मेरी बात सुन रहे हो, एक्चुअली मन से सुनोगे तो ही सुन पाओगे। सपोज आपका मन अगर घर में है कि भाई ये घर में ये काम था, आपका कान मेरी बात सुन रही है लेकिन नहीं सुन रही है। अगर 5 मिनट के बाद मैं आपको पूछूं आपने क्या सुना, मतलब ये फिर से बताएंगे ठीक से सुना नहीं, क्यों नहीं सुना भैया, तुमने पर्दा लगाया था कान पे, लॉक किया था, कान तो खुला था, मन कहीं और था। कभी कभी कुछ चीजें हम देखते हैं लेकिन नहीं देखते हैं, क्योंकि मन नहीं था। मन होगा तो ही ये सारी इंद्रिय काम करेगी। भागवत में दत्तात्रेय जी के बारे में आता है ना, दत्तात्रेय जी किनको गुरु बनाते हैं, उनके 24 गुरुओं में से एक गुरु किसको बनाते हैं, जो बाण बनाने वाला, जो बाण बनाते हैं ना पत्थर के ऊपर में, बाण को जो है वो शार्प कर रहा था, नुकीला बना रहा था, और दत्तात्रेय जी वहां बैठे हुए थे। तो राजा की पूरी सवारी वहां से चली गई, घोड़ा और घोड़ा गाड़ी और बाजाए बजाते हुए, उसने देखा ही नहीं, वो अपना जो है शार्प कर रहा था, अपने बाण को नुकीला बना रहा था। उसके बाद पीछे से कोई आदमी आया और बोला, देखो भैया क्या राजा की सवारी यहां से गई। बोला, अच्छा गई क्या, मैंने नहीं देखा। बोले, तुम पागल हो कि इतना आवाज, इतना ज्यादा, पूरा यहाँ से हाथी घोड़ा, तुमने नहीं देखा। बोले, मैंने नहीं देखा, मैं ये कर रहा था, मुझे दिखाई नहीं दिया। तो तभी का तभी दत्तात्रेय ने सोचा, ये मेरे गुरु है, ऐसे जीना चाहिए इस भौतिक जगत में। है भौतिक जगत में, लेकिन जो देखने वाली चीज है उसी को देखते हैं, जो सुनने वाली चीज है उसी को सुनते हैं। मन नहीं देना है, मन सिर्फ भगवान को देना है। हमारी इंद्रिय हम हर काम में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मन जो है वो भगवान के लिए। इसमें अगर आप अभी संडे प्रोग्राम के लिए आ रहे हो, तो बहुत सारे गाड़ियों में आते हो, स्कूटर कार चलाते हुए आते हो, कितने लोगों ने रास्ते में काउंट किया है कितने कचरे डब्बे थे, किसी ने काउंट किया? काउंट छोड़ दो, दिखाई भी दिया, एक कचरा का डब्बा भी दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? आप आंख बंद करके गाड़ी चला रहे थे क्या? गाड़ी आंख खोल के ही चला रहे थे, फिर भी कचरे का डब्बा क्यों नहीं दिखा? आप जो देखना चाहते थे आपकी आंख वही देखती है, आप जो नहीं देखना चाहते वो नहीं दिखेगा। इसलिए भौतिक जगत में भी जब हम जीते हैं, हमें जो देखना चाहिए बस हमें उसे देखना चाहिए, जो जरूरत की चीजें नहीं है उसको नहीं देखना चाहिए। हमारे मन को स्थिर करना है। इसलिए तो गोपिकाएं उद्धव को क्या बोलती है, जब उद्धव बोलता है ना कि आपके जरा मन को डाइवर्ट करो, आप हमेशा कृष्ण कृष्ण बोल के ऐसे बैठ के रोती रहेंगे तो कैसे होगा, मन को किसी काम में लगाओ, किसी चीज में लगाओ, तो धीरे धीरे आप जो है ये विरह से बाहर आ जाएगी, इतने डिप्रेशन में आप जो आ गए हैं। तब गोपिकाएं क्या बोलती है, बोलती है, उद्धव मन ना भय 10-20, जो मन था वो गया कृष्ण संग, अब मन है ही नहीं तो किसी चीज में लगाए ना। अगर मन होता तो किसी चीज में लगाते हम, काम में, किसी चीज में, लेकिन मन तो कृष्ण लेके चला गया, तो अब क्या करें। तो हम तो गांव के लोग हैं, हमारे पास एक ही मन है। आप लोग शहर के लोग हैं, आपके 10-20 मन होते हैं क्या? एक मन कृष्ण में, एक मन काम में, एक मन माया में, ऐसा होता है क्या? हम लोगों के तो 10-20 मन है, कभी एक मन थोड़ा कृष्ण के लिए संडे संडे, बाकी के मन काम पैसा नाम थोड़ी माया। तो ये मन को जो हमें कंट्रोल करना, ये मन बहुत सारी चीजें मांगते। इसलिए बोलते हैं ना कि भुक्ति मुक्ति कामी सब लोग अशांत, कृष्ण भक्त निष्कामी इसलिए शांत, अथैव शांत, उसकी कोई कामना नहीं है इसलिए कृष्ण भक्त शांत है, कोई कामना नहीं। लेकिन जिसकी बहुत सारी कामना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो हमेशा अशांत ही रहता है। कृष्ण भक्त कोई भी परिस्थिति में हो वो शांत ही रहता है। आप लोगों को मैं सकुबाई की कहानी सुना के यहां खत्म करूंगी। महाराष्ट्र में सकुबाई नाम की एक बहुत अच्छी भक्त थी। अब उन दिनों में जो है उनकी शादी वगैरह बहुत छोटे एज में हो जाती थी, 9 साल 10 साल 12 साल। आपको पता है सीता माता की शादी राम जी से कब हुई थी, तब वो कितने साल की थी? मैंने सुना 9 years, 9 साल की थी, छोटी सी सीता माता की जब शादी हुई। तो ये सकुबाई की जब शादी हुई तो बहुत कम उम्र की थी। तो जब उनकी शादी हुई, ससुराल में गई तो वहाँ सास ससुर अच्छे नहीं थे, बहुत कष्ट देते थे, पति भी कष्ट देता था, तो बहुत सारे दुख थे। पर वो इतनी अच्छी भक्त थी, पंडरीनाथ का, विठल नाथ का जो फोटो है उसे लेके रात को जो है पूरा काम करने के बाद में रोते हुए सो जाती थी। अब रोती क्यों थी? कंप्लेन से नहीं कि मेरा पति ऐसा है, मेरा सास ससुर ऐसे है, मैं क्या करूं, मैं तो बहुत दुखी हूं। कोई कंप्लेन नहीं, ठाकुर जी के चित्रपट को देखते हुए वो कहती कि मेरी एक ही इच्छा है, मैं आपका दर्शन लेना चाहती हूँ, मैं विठलनाथ में आपको एक बार देखना चाहती हूँ, बाकी मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। तो ये रोज का था, सुबह जल्दी उठना, खेतों में काम करना, घर में काम करना, सास ससुर की सेवा करना, घर की सफाई करना। तो उन दिनों में तो आटा वाटा भी पीसना, खुद ही चक्की चलाना, और सारे काम। और कभी कभी रात भर भी ये सोने नहीं देते थे, उनके पति और सास ससुर काम देते रहते थे तो पूरा पूरा रात भर उन्हें काम करना पड़ता था। पर एक ही हमेशा रात को एक ही उसका रोना कि मैं आपको देखना चाहती हूँ, भगवान मुझे कंप्लेन कुछ नहीं है, ये जो भी दुख मुझे मिल रहा है ये तो मेरे पूर्व के कर्म है, उसमें आपको क्या कंप्लेन करना, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं आपको एक बार देखना चाहती हूँ। तो रुक्मिणी देवी एक बार कृष्ण को बोलते हैं कि आप बोलते नमे भक्त प्रनश्यति, आप अपने भक्तों की रक्षा करते लेकिन आप इसकी रक्षा ही नहीं कर रहे हो, मैं देखते हमेशा दुखी है, कितना सब इसको कष्ट दे रहे हैं, आप क्यों इसकी रक्षा नहीं करते हो? ठाकुर जी ने बोला देखो मुझे प्रॉब्लम में मत फंसाओ, मैं नहीं जा सकता उसकी मदद करने के लिए। रुक्मिणी जी ने बोला क्यों नहीं जा सकते मदद करने के लिए, जाना ही पड़ेगा। तो भगवान ने बोला देखो रिस्क इज ऑल योर्स, तुम्हारा पूरा रिस्क, तुम बोल रही हो मैं जा रही हूं, मेरे को जाने का इच्छा नहीं है। रुक्मिणी जी ने बोला ये अजीब बात है, भक्त प्रॉब्लम में है जाने के लिए बोलने से बोलते रिस्क, अब जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो भगवान डर के मारे भागे नीचे हेल्प करने के लिए। अब यहां क्या हो रहा था, सकुबाई गई नदी के किनारे चंद्रभागा नदी में पानी भरने के लिए। पानी जब भर रही तो उसने देखा कि सब लोग भजन करते करते विठलनाथ का दर्शन करने के लिए जा रहे। अब उसकी भी इच्छा तो है जाने के लिए लेकिन जाना तो मना है, तो जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन पानी भरते भरते क्या वो लोग भजन कर रहे ना तो ये भी भजन कर रही है। तो भजन करते 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 उसको होश नहीं रहा, वो उनके पीछे 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 चली गई। वो लोग भजन गा रहे, ये दूसरा लाइन गा रही है, पीछे पीछे वो चली गई। चलते 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 वो चली गई दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे इनके सास ससुर जो है इंतजार कर रहे हैं। तो किसी ने देख लिया कि ये सकुबाई जो है दर्शन करने के लिए जा रही है, पंडरपुर जा रही है दर्शन करने के लिए, उसके सास ससुर को इन्फॉर्म कर दिया। तो उनकी सास एकदम गुस्सा में आके भागती हुई गई, सकुबाई को पकड़ा, खींचा बाल से और लेके आई, बोला तुम कहाँ जा रही थी? तो बोली नहीं नहीं मैं ऐसे ही चली गई, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैं एक बार विठलनाथ का दर्शन करके आती हूँ। बोलते कोई दर्शन वर्शन नहीं है, बहुत सारे घर में काम है। यहाँ पे उनकी सास क्या करती है, सकुबाई को एक पिलर, एक स्तंभ पे रस्सी से बांध देती है। अब सकुबाई खड़ी हुई है, रस्सी से बांधा हुआ है। अब यहाँ पे रुक्मिणी जी का ऑर्डर है, तो ठाकुर जी आ जाते हैं, सकुबाई को खोल देते हैं, बोलते तुम जाओ, तुम विठलनाथ का दर्शन करके आओ, मैं जो भी है यहाँ पे संभाल लूंगा। अब ये तो कोई होश में नहीं है, कौन मुझे खोल रहा है, क्या है, अच्छा मैं जाऊँ विठलनाथ का, हाँ तुम जाओ, ठीक है, चली गई विठलनाथ का दर्शन करने के लिए। भगवान क्या किए, यहाँ पे सकुबाई के रूप में खड़े रह गए, उसको बांध दिए। अब भगवान बन गए सकुबाई। अब भगवान जब आ जाते हैं, सकुबाई बनते तो क्या हुआ होगा, वही वो वृंदावन लीला के जैसे जब भगवान बन गए थे गोप बालक और गाय तो सबको प्यार आने लगा। तो यहाँ पे उनके सास ससुर को सकुबाई पे बहुत प्यार आ रहा है, तो कितनी अच्छी है, हम क्यों इसको ऐसा डांटते हैं, क्यों हम इसको इतना तकलीफ देते हैं, उसके पति को भी बहुत प्यार आ रहा है। और भगवान जो है अपना सकुबाई का जो जो काम है वो करते हैं, कपड़ा धोना, सारे उनके सास ससुर का कपड़ा धोना, नदी के किनारे जाके बर्तन मांझना, रसोई करना, सब्जी काटना, सब काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल सकुबाई है वो चली गई, विठलनाथ का दर्शन किया, और वहां पे सकुबाई ने क्या किया, विठलनाथ की जो मूर्ति थी उस मूर्ति में जाके वो लीन हो गई, और वहां पे उसका देह ने उसको उसने उसका देह को त्याग कर दिया, अब वो गुजर गई। अब यहाँ पे रुक्मिणी जी आई कि अरे बहुत दिन हो गए आप वापिस नहीं आए। तो भगवान बोले अब सकुबाई तो वहां पे देह छोड़ गई है, तो अब मैं परमानेंट यहाँ सकुबाई बन के रहूंगा, चॉइस क्या है, क्योंकि मैं ही हूं यहाँ पे सकुबाई, उन लोगों को तो पता नहीं कि सकुबाई देह त्याग कर चुकी है। तो भगवान ने रुक्मिणी को बोला, इसलिए मैंने तुमको पहले ही बोला था रिस्क इज ऑल योर्स, अब तुम रहो अकेली वैकुंठ में, मैं यहाँ रहूंगा, मेरा अब यही काम है, अब तुम जाओ, मेरे को सब्जी काटनी है और कपड़े धोने हैं। अब रुक्मिणी देवी बोली, अरे मैं बिना मतलब कि इनको भेजी क्यों, यहाँ पे गलती हो गई मुझसे। अब रुक्मिणी जी रो रही है, तुम वापिस आओ, भगवान बोले डिस्टर्ब मत करो, कपड़ा धोना है, बर्तन धोना है, मेरे सब्जी काटनी है, तुम जाओ। रुक्मिणी जी रो रही है। अब फिर क्या है, रुक्मिणी जी ने सोल्यूशन निकाला, वो खुद आई एक गांव वाली के रूप में और आके फिर उसके सास ससुर को इन्फॉर्म किया कि भाई आपकी जो बहू है वो वहां पे देह त्याग कर चुकी है। और फिर कुछ और भी जो उनके नेबर्स थे जो यात्रा से वापस आए, उन्होंने भी बताया कि भाई ऐसे ऐसे आपकी, तो बोले आप क्या बात कर रहे, मेरी बहू तो घर में ही है। नहीं नहीं आपकी बहू कहाँ है, हमने खुद देखा वहां पे, उसने जो है अपना देह त्याग कर दिया। और फिर जो है ठाकुर जी अपना निजे रूप का दर्शन करवाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। तो फिर तब उन्हें बहुत दुख लगता है, अरे इतनी शुद्ध भक्त को हमने कितना कष्ट दिया, सखुबाई को हमने कितना कष्ट दिया। तो उस तरह से हम देखें कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनकी तो कोई इच्छा है ही नहीं, अगर पूरा संसार भी उन्हें दुख दे फिर भी उन्हें कोई कंप्लेन नहीं होती। हमारा दुख तो कुछ नहीं, हमें तो इतने इतने दुख में ही हम कंप्लेन करते हैं, अरे भाई कोई है कि नहीं है, उधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहे, इतने सालों से हम जप कर रहे हैं, हमारा टेक केयर करो। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें कंप्लेन लगता ही नहीं है, उन्हें लगता ही नहीं है कि मुझे भगवान से कुछ मांगना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे। हरत्वं संसारं द्रुता तरमसारं सुरपाते हरत्वं पपानं विदितं अपारं यदवपते अहो दीननाथ निहित चरणो निशीतं निदां जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। वो सुंदर बात बोल रहे हैं, हरत्वम संसार द्रुत तरम असारम सुरपते, ओ सुरपते, ओ देवताओं के पति, ओ देवताओं के नाथ, हर लो, क्या हर ले, ये जो भौतिक जगत में हमारी तृष्णाएं है, ये जो भौतिक जगत में हम है, ये सब कुछ हर लो, हमें आपके धाम में वापस बुला लो। हरत्वम पपन विततम, ये जो इतने सारे मैंने पाप किए है ना, एकदम समुद्र जैसे अशेष है जिसकी कोई बॉर्डर ही नहीं है, ये सारे पाप भी आप हर लो, ओ यादव पते, अहो दीन नाथे निहित, और ऐसे भक्त जिसका आपके सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है, जो आपको ही आपका सर्वस्व मानते हैं, ऐसे भक्त के आप क्या है, निश्चितम इदम, आप अपने चरणारविंद का आशीर्वाद उनको देते हैं। ऐसे श्री जगन्नाथ स्वामी जो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जो अपने भक्तों को अपने चरणारविंद की आशीर्वाद देते हैं, ऐसे श्री जगन्नाथ स्वामी को मेरे नयन के सामने आप हमेशा रहिए, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे। यहाँ पे एक सुंदर बात अगर आप ऑब्जर्व करें, वेदर वो नरोत्तम दास ठाकुर हो या भक्ति विनोद ठाकुर हो या आदि शंकराचार्य या चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने भी इसकी रचना की हो या भक्ति विनोद ठाकुर हो, हमेशा अपने भजनों में लिखते हैं मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैं तुच्छ हूँ, मैं पतित हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कभी कभी एक प्रश्न आ सकता है मन में कि भक्त लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं, झूठ ही है ना, क्या पाप किया भक्ति विनोद ठाकुर ने, क्या पाप कर दिया नरोत्तम दास ठाकुर ने, क्या पाप किया रूपा गोस्वामी ने, ऐसा क्यों बोलते हैं वो लोग कि हमने इतना पाप किया, हमने इतना पाप किया, ये तो झूठ है, उन्होंने क्या पाप किया है। ये क्वेश्चन किसी ने एक बार गांधी जी से भी पूछा था कि वैष्णव लोग इतना झूठ क्यों बोलते हैं, हमेशा बोलते मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने ये किया। तो गांधी जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, उन्होंने कहा कि वो झूठ नहीं बोलते, उनका स्टैंडर्ड ऑफ पाप ही डिफरेंट है। हमारे लिए पाप क्या है, वही मांस खाना या ड्रिंक करना या अबदस्ती संग करना, ये करना, हम उसको पाप सोचते हैं। लेकिन ये लोग किसको पाप सोचते हैं, अगर एक सेकंड के लिए भी भगवान की विस्मृति हो जाए तो उसको पाप सोचते हैं। उनका स्टैंडर्ड ही डिफरेंट है। तो इसीलिए जब वो ऐसा बोलते हैं ना कि मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत पापी हूँ, वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं जैसे हम लोग जो एक्टिंग करते हैं, योर हम्बल सर्वेंट, योर ओबीडियंट सर्वेंट, योर यू नो फॉलन सर्वेंट. हालांकि हमारे अंदर में ऐसा कोई भाव ही नहीं होता है फॉलन ओबीडियंट कुछ भी, लेकिन ये लोग जब बोलते हैं वो झूठ नहीं बोल रहे, वो लोग एक्टिंग नहीं कर रहे, वो लोग सच में ऐसे सोच रहे कि अरे जिसने मुझे शरीर दिया, हाँ, जो तन दियो ताके बिसराया, जो उसने हमें शरीर दिया इस शरीर उसको मैंने बिसराया, मौसम नमक हराम न कोई, मेरे जैसा कौन हो सकता है नमक हराम, जिसने मुझे शरीर दिया सब कुछ दिया इस दुनिया में, आंख नाक कान होठ, ऐसे श्री भगवान को मैं भूल जाता हूं, मेरे जैसा आदमी कौन है, मैं कुटिल का हूं, मैं लंपट हूं, मेरे में सारे अवगुण है क्योंकि मैं भगवान को भूल जाता हूं. तो ये होनी चाहिए भक्तों की भावना कि एक सेकंड के लिए भी भगवान को नहीं भूलना. भक्ति जीवन में जितने भी डूज एंड डोंट्स हमें दिए गए हैं उसका मूल रीजन है भगवान को नहीं भूलना. हम क्यों आते हैं सुबह से आरती या मंगलारती या दर्शनारती, संध्या आरती, भोग आरती, राजभोग आरती, ये आरती क्यों करते हैं, ये सब माला पहनना, जप करना, तुलसी माला पहनना, माला बैग लगाना क्यों ये सब करते हैं? एक ही है उसका मूल कारण पीछे, भगवान को याद करना, भगवान की विस्मृति नहीं होनी चाहिए. लास्ट में बोला गया है जगन्नाथाष्टकम पुण्यम यापथे प्रयता सुचिः सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम से गच्छति. जो भी अपने प्योर मन से, पवित्र मन से जगन्नाथाष्टकम का पारायण करता है क्या होता है, सर्व पाप विशुद्धात्मा, सारे पापों से मुक्त होके वो विशुद्ध बन जाता है. और क्या होता है, विष्णु लोकम से गच्छति, भगवान विष्णु के लोक में जाने के लिए उसे प्रवेश मिलता है. सो श्री जगन्नाथाष्टकम की जय. समझ में आया अब उसका आंतरिक भाव कितना सुंदर है, राइट? तो अब जब पारायण करेंगे तब और भी भाव से पारायण करना है. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.
सब कृष्णा 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 लगे, सब कृष्णा.